ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਲਾਖਿਆ ਚਕਸ਼ੂਰੁਨ ਮਿਲਿਤੰ ਜੇਨ ਤਸਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ। ਵੰਛਾ ਕਲਪਤਰੁਭਯਸ੍ਚ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁਭਯ ਏਵ ਚ ਪਤਿਤਾਨਾਂ ਪਾਵਨੇਭ੍ਯੋ ਵੈ਷੍ਣਵੇਭ੍ਯੋ ਨਮੋ ನಮೋ ಮಹಾಪದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ನೆ ಗೌರತ್ತಿಸೇ। ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ। हम सबों का परम सौभाग्य है कि कासगंज में आज नगर संकीर्तन होगा और भगवान की लीला कथाओं के संबंध में कुछ चर्चाएं होंगी। यदि जीवन में एक बार भी कृष्ण नाम करने का सौभाग्य हो या भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करने का सुयोग हो तब तो वह जीवन धन्य है और सार्थक है, अन्यथा वह जीवन बेकार का है। विशेष करके आप लोगों के निकट ही ब्रजमंडल में कृष्ण प्रकट हुए और ऐसी सुंदर सुंदर मधुर लीलाओं को प्रकाश किया जो आज तक कहीं भी उन लीलाओं का प्रकाश नहीं हुआ था। मैं इसके संबंध में कुछ बोलूंगा। हमारे बोलने के पहले हमारे सार्थकता किसमें है, हमें क्या करना उचित है। बहुत से तरह तरह के साधु संत लोग आते हैं, अपने अपने विचारों को देते हैं। आप लोग विचार करके देखें ये हमें हमारे लिए कौन सा ग्रहणीय है, कौन सा ग्रहणीय नहीं है। जगत में पहले रावण भी आया, कल जिसका पुतला जलाया गया होगा सर्वत्र। रावण की एक बात थी, एक विचारधारा उसकी थी, शक्तिमान है शक्ति नहीं है। रामचंद्र रहें वो रहें कोई भी आपत्ति नहीं, उनकी शक्ति को हरण कर लो, उन्हीं शक्ति कर रहे, इसलिए सीता जी को हरण करके ले आया। वो शक्ति की उपासना करता है, शक्तिमान को नहीं मानता। और ठीक उसी तरह से ब्रज में कंस, वो राधा जी के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं की, कृष्ण को मारना चाहा। जितने असुर लोग होते हैं संसार में वो भगवान का आकार नहीं मानते, भगवान को निराकार निरंजन अव्यक्त अनादि मानते हैं। साक्षात रूप में देख रहे हैं कृष्ण को और कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्ञमाम एकम शरणम ब्रज। और फिर भी कहते हैं कि भगवान निराकार है और ये भी कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये सब गलत धारणाएं हैं। ब्रज में भक्ति की सरिता, प्रेम की सरिता बहती है, वहां पर ज्ञान का कोई भी स्थान नहीं है। मुक्ति देने पर भी भक्त लोग नहीं ग्रहण करते हैं। हमारा स्वरूप क्या है, हमें कैसे आनंद मिल सकता है, इसके संबंध में श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी अभी 10 मिनट 15 मिनट संक्षेप में कुछ बोलेंगे। इसके बाद मैं भी बोलूंगा और इसके बाद में नगर संकीर्तन बहुत सुंदर रूप में निकलेगा। आप लोग सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे और इन विचारों को खूब अच्छी तरह से श्रवण करें। बोलो। शुभानंद ब्रह्मचारी और नारद मुनि के द्वारा कुछ श्रवण किया। मैं संक्षेप में कुछ बोल रहा हूँ। अभी नगर संकीर्तन निकलने वाला है, इसको जरा साइड से लें, हमारे ऊपर में कोई प्रभाव न पड़े। समस्त पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, बहुत विद्वान थे, बहुत ही प्रभावशाली थे, बहुत ही वीर थे, कृष्ण की गोदी में खिले थे। कृष्ण ने उनको उत्तरा के गर्भ में उनको प्रायोपवेशन किया। मैं आज से अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा, न सोऊंगा। साथ ही साथ में उस समय में बेतार का तार और ये सब कुछ भी नहीं था। न जाने कैसे 88,000 ऋषि, जिसमें पराशर, नारद, व्यास, सुखदेव गोस्वामी, कवि हवि, अंतरिक्ष, वशिष्ठ, गौतम, जितने भी भारतवर्ष के सिद्ध महात्मा थे, वो सभी लोग एकत्रित हुए। उन्होंने दो प्रश्न किया। पहला प्रश्न, जो तुरंत अभी मरने वाला है उसका क्या कर सकते हैं? अभी तुरंत मरने वाला है, टट्टी हो रही, धुक धुकी चल रही, बचने की एकदम आशा नहीं, एक क्षण में दो क्षण में ये मर जाएगा, या अभी तभी मरा। और दूसरे, जो आज मरेंगे या कल मरेंगे या परसों या बरसों मरेंगे जरूर, इन लोगों का क्या कर सकते हैं? दो ही प्रकार के लोग हैं, जो अभी तुरंत मर रहे हैं और जो मरने के लिए तैयार हैं, और जो दो दिन के बाद में बूढ़े होंगे या अपने कर्म फल से मरेंगे। अजर अमर होकर के कोई नहीं आया, इनका क्या कर्तव्य है? मनुष्य के ही प्रति नहीं, प्राणी मात्र के प्रति कर्तव्य पूछा। उन्होंने वही जो श्लोक बतलाया, ब्रह्मचारी जी ने वही बतलाया। मर रहा है एक व्यक्ति, यज्ञ नहीं कर सकता, समाधि नहीं लगा सकता, टट्टी हो रहे हैं, अभी प्राण अभी गले में आ गया है, वो अर्चन करेगा, न पूजा करेगा, न समाधि लगाएगा, न यज्ञ करेगा, क्या करेगा? बस कान बोल भी नहीं सकता, पैर हिला भी नहीं सकता, कान में राम राम कृष्ण कृष्ण कह दो, गंगा में जल में तुलसी लेकर के उसके मुख में दे दो, उसकी परम गति होगी। आप लोगों ने अजामिल का नाम सुना होगा, मरते समय उसने क्या किया? बस नारायण, वो भी अपने बेटे के लिए किया, भगवान के लिए नहीं किया, और उसकी परम गति हो गई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम किया, सीधा नाम नहीं, राम राम नहीं आया, मरा 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 से आया, और ये कैसे हो गए? ब्रह्म समान हो गए, जीवन मरण से अतिरिक्त ऊपर उठ करके चले गए और भगवान के परम भक्तों में से एक हो गए इस नाम के बल पर। यही नहीं, भागवत और रामायण में इसके लाखों उदाहरण हैं। नाम के बल पर सबरी को देखिए और भी इतिहास देखिए, भागवत इत्यादि में, तो वही पर उन्होंने पूछा तो उन्होंने यही कहा, सबई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहे तुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। भगवान 10-20 नहीं है, एक हैं, और वो कृष्ण स्वयं भगवान हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, लोग समझते नहीं हैं। एक यदि कृष्ण की साधना की जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और किसी की पूजा की कोई भी आवश्यकता नहीं रही। यदि एक बार भी हम कह दें हृदय के अंतरतम से, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, बस इसी से ही भवसागर पार कर जाएगा। किंतु कुछ लोग हैं विशाल लोगों की भ्रमित कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं ये क्या है। दुर्गा जी की पूजा करें, न काली की पूजा करें, न गणेश जी की पूजा करें, न शंकर की पूजा करें, न राम की करें, न कृष्ण की पूजा करें, किसकी पूजा करें, वो समझते हैं कि बहुत सी चीजें हैं। इसको संक्षेप में ये समझिए, कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, जो परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया, एक ही भगवान वो कृष्ण हैं, उन्हीं के प्रकाश राम नृसिंह कल्कि वामन 24 प्रकार के अवतार हैं, वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। कृष्ण ही विभिन्न रूपों में प्रकाशित होते हैं, सबके मूल कृष्ण हैं। जितने भी देवता देवियां हैं ये उनकी दास दासियां हैं। कृष्ण प्रसन्न होने पर अपने आप ये प्रसन्न हो जाएंगी, और कृष्ण को छोड़ करके जितने भी देवता देवी हैं किसी का भी भजन करो वो प्रसन्न होकर के कुछ दे नहीं सकते। वो जो देंगे वो मरणशील है, दुखदायी है। शंकर जी ने कृपा करके रावण की आराधना से संतुष्ट होकर के और उसके मानने पर उसको 10 सिर दे दिया। किया क्या उसने, जगत जननी सीता जी का अपहरण करके ले आया। देखिए तो कैसा नीचा चला गया एकदम, जो कोई दुष्टता का कार्य नहीं कर सकता है उसने किया। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे जितने भी देवता देवी हैं यही नहीं देखेंगे कि इनका कल्याण है कि नहीं, जो कुछ आप 20 मांगेंगे तो 20 दे देंगे। किंतु कृष्ण ऐसे नहीं है, वो जीवों के सर्वस्व को हरण कर लेते हैं, उनके चित्त को भी चोरी कर लेते हैं और भव सागर से अनायास ही पार करके के अपने चरणों का प्रेम दे देते हैं। तो मैं ये कहने जा रहा था, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को समस्त धर्मों का सार एक भगवत प्रेम के लिए जब उसने दिखलाया। कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति गोपियों का जैसा प्रेम है, सखाओं का प्रेम है, नंद यशोदा का जैसा प्रेम है, यही प्रेम हम लोगों का सबसे प्रयोजन है, सबका साध्य है। इसके अतिरिक्त हमारा कल्याण कभी भी संभव पर नहीं हो सकता। प्रसंग बस ये आप लोगों को बतलाऊं, परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी बतला रहे हैं, कर्मण्यारहमानानां दुख हत्यै सुखाय च पश्चेत् पाप विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम। संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है, चींटी से लेकर कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा तक, जो सुख नहीं चाहता, आनंद नहीं चाहता। है कोई व्यक्ति ऐसा जो सुख नहीं चाहता है? एक चींटी भी रात भर दीवार पर इधर उधर घूमती है, कहीं कोई मीठा गुड़ी इत्यादि मिल जाए, चीनी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। हम मनुष्य होकर के वही काम करते हैं जो चींटी करती है। सभी लोग सुख के लिए कार्य करते हैं, दुख हत्या हत्या सुखाए, दुख दूर हो जाए और सुख मिले। हम लोग एकत्रित भी हुए इसी के लिए, जरा सुख मिल जाए, दुख दूर हो जाए। जितने भी कर्म हैं उसके आधार रूप में दुख दूर हो जाए और निर्वचिन्न सुख मिले। किंतु होता है उल्टा। आज विश्व के जितने भी बड़े बड़े बुद्धि वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में मिल करके जगत के कल्याण के लिए कुछ चिंता करते हैं, किंतु अपना ही जो कल्याण नहीं कर सकते दूसरों का कल्याण क्या करेंगे। युद्ध कम गया, युद्ध बंद हो गया, सबको भोजन मिल रहा है, कितने वर्षों लाखों वर्षों से ये लोग चेष्टा कर रहे हैं, दुख दूर हुआ हमारा। एक आदमी बचपन में जो सुखी रहता है वृद्धावस्था में वो सुखी नहीं रहता, इंद्रियां शिथिल हो जाती, जरूर मरना पड़ेगा, मरने का भी एक दुख होता है। मरने में लाखों बिच्छू एक साथ में डंक मारे उससे भी अधिक दुख होता है। हम लोग जो कुछ भी कमाई करते हैं, जो कुछ इस जीवन में हम संग्रह कर रहे हैं, उसका एक ढेला भी, एक पाषंग भी, एक टुकड़ा भी हम लेकर के जाने के समय में जाएंगे कि नहीं? एक सुई धागा ले जा सकते हैं? नहीं लेकर के जा सकते। किस लिए इतना हम परिश्रम करते हैं? सुख के लिए, किंतु सुख नहीं मिलता है। इसी को अब बतला रहे हैं कि ये सुख कैसे मिलता है। भगवान ही सुख स्वरूप आनंदमय है। जब तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कि उनकी सेवा में हम नियुक्त नहीं होंगे, तब तक सुख नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा, कभी हो नहीं सकता। किसी प्रकार से भगवान के चरणों में यदि हम पहुंच गए, उनका स्मरण किया, उनकी लीला कथाओं को सुना, तो इसी से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सब प्रकार का जो आनंद है वो मिल सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, अभी विश्व में तरह तरह की उन्नतियां हुई, बहुत तरह की डिस्कवरी हुई, अनुसंधान हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत उन्नति हुई, कम्युनिकेशन की उन्नति हुई। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का तात्पर्य ये, आप यहीं पर घर में बैठे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पर भाषण दे रहे हैं वाशिंगटन में या कहीं, और उनके चित्र समेत उनको देखिए ये क्या क्या बोल रहे हैं। इंग्लैंड में क्रिकेट हो रहा है, यहां से बैठे बैठे देखिए ये कौन प्लेयर कैसा कर चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, और ऐसे ऐसे विमान बने हैं जो मन की गति से अब चलने वाले हैं, उस पर 300-400 आदमी बैठ करके कुछ ही घंटों में इंग्लैंड या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में आदमी पहुंच सकता है। इस तरह से सारा जगत मानो आज विज्ञान की उन्नति से एक जगह एक मुट्ठी में एकत्रित हो गया। यह तो उन्नति हुई, रसोई घर की ऐसी उन्नति, घर की उन्नति हुई, स्विच दबाइए रसोई घर डाइनिंग रूम आ गया, स्विच दबा दिए लैट्रिन आ गई, स्विच दबा दीजिए वो जहां पर लोग बैठते हैं खाते हैं भोजन करते हैं या और रिक्रिएशन रूम भी आ गया। स्विच दबाने की आजकल स्विच दबाने की कोई जरूरत नहीं, कंप्यूटर सिस्टम आ गया। बहुत से लोग अभी तक कंप्यूटर नहीं जानते, कितनी उन्नति हुई, ये सब सारा विश्व एकत्रित एक जगह हो गया, एक मुट्ठी में आ गया। ये तो बात तो हुई, किंतु एक बड़ा भारी अपकार भी हुआ। अपकार क्या हुआ, जो दिल दो एक थे अब अलग हो गए। पहले स्त्री में और पति में जो प्रेम था सीता और राम की भांति, वो अब नहीं। बेटे में, भाई में और भाई में वह प्रेम नहीं रहा। एक पैसे के लिए, दमड़ी के लिए, एक इंच जमीन के लिए लड़ मरते हैं। आजकल पेपरों में निकलता है स्त्रियां अपने पति को विष दे दिया, एक दूसरे प्रेम कर लिया दूसरे से। एक पति ने अपनी स्त्री को मार दिया दूसरे से प्रेम करने के लिए। रोज ही अखबारों में ये सब भरा रहता है। तो आज हम देखते हैं कलकत्ता में, बंबई में, शिकागो में, जापान के कोहिमा में और सब देशों के जगह हम देखते हैं उन्नति तो हुई वैज्ञानिक हमारे सुख के लिए, किंतु दिल जो थे अलग अलग हो गए। एक फ्लैट पर, एक घर में कोई एक युवा लड़का मर गया और दूसरे जगह में उसी फ्लैट पर एक दूसरे का विवाह हो रहा, जानता ही नहीं ये कौन मरा कि नहीं मरा, कोई सहानुभूति नहीं। सड़क पर एक आदमी को एक गोली यहीं पर मार दिया, कोई डर के मारे उसको बचाने के लिए नहीं जाएगा, उठाने के लिए नहीं जाएगा, कोई सहानुभूति नहीं, यह प्रेम सर्वस्व नष्ट हो गया। आज दूसरी कोई समस्या नहीं जगत में है, समस्या है इस प्रेम की, जिसको बच्चे ने कहा परस्पर प्रेम नहीं है। ये प्रेम को दिखलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी आज से 500 वर्ष पहले प्रकट हुए। देखा वहां पर कीर्तन कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु परिकरों को। ये चैतन्य महाप्रभु दूसरे नहीं थे, स्वयं कृष्ण थे, एक विशेष विषय के लिए आए थे जगत में देने के लिए, वो प्रेम देने के लिए आए थे। कौन सा प्रेम देने के लिए आए थे, जगत में तरह तरह के प्रेम है, भातृ प्रेम एक है, पति और स्त्री का परस्पर प्रेम है, स्त्रियों का पतिवत प्रेम है, पुत्र का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य है सेवा का, पुत्र पिता का पुत्रों के प्रति कन्याओं के प्रति वात्सल्य भाव है। ये सब प्रेम के विशेष ये भेद हैं, किंतु इन सब प्रेमों में तुलनामूलक दृष्टि से देखने से ये पता चलता है, सेवक रूप में हनुमान जी राम की सेवा करते हैं, सब समय सेवा ही करते रहते हैं, एक सेकंड के लिए उनको विश्राम नहीं होता है। कैसी सेवा करते हैं, एक समय भरत जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये चारों मिलकर के विचार किया, हम लोगों के लिए कोई सेवा रखता ही नहीं है हनुमान, दिन भर रात भर यही सेवा करता रहता है। अब कोई एक ऐसा हम लोग प्लान बनाए जिससे कि उसको हम एक मिनट का समय न दे जो वो सेवा कर सके, बस हम लोग चारों आदमी दिन रात की सेवा को बांट लें। ऐसा विचार करके उन्होंने दिन रात की सेवाओं को आपस में ही चारों ने बांट लिए और हनुमान के लिए एक भी कोई सेवा नहीं छोड़ी। जब हनुमान सेवा करने आए उनको निकाल दो, बाहर रहो, कोई भी सेवा ना मिले, तो ये बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा जे भाई हम बिना सेवा के तो रह नहीं सकते, इसलिए कोई भी एक छोटी भी सेवा दे दो। अब कोई सेवा है ही नहीं ये तुम करेगा। उन्होंने कहा आराम से, जैसे प्रभु एक तो हमको ये दे दीजिए, मैं थोड़ी सी चुटकी बजाया करूं, क्योंकि आपको जम्भाई कभी आ सकती है, तो जम्भाई आते समय में चुटकी बजा दो। जम्भाई नहीं आना चाहिए, ये अज्ञानता आलस्य है, सब कामों को बर्बाद करने वाला है, इसलिए चुटकी आने जम्भाई आने पर चुटकी लोग बजा लेते हैं, राम राम कह लेते हैं। तो ये काम है मेरे जिम्मे छोड़ दिए। कहे इनको तो जम्भाई आने रही है तो चुटकी तुम आगे से क्यों बजाएगा। तो नहीं नहीं, अरे कब आएगी तो मैं देखूंगा, इसलिए ये सेवा हमको दे तो दीजिए। उन्होंने दे दिया। कहे अच्छा तुमको तो जम्भाई आएगी नहीं, ले। उन्होंने चुटकी बजाना आरंभ किया और इनको जम्भाई आने लगी। चौबीसों घंटा चुटकी ऐसा बजाए दिन रात जो उनकी कोई भी सेवा न कर सका। अंत में हार करके वो लोग उनके पास में गए, बोले जे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, आपके लिए कुछ सेवा हम लोग विभाग करके दे देते हैं। ऐसे हनुमान जी बड़े सेवक थे, किंतु इनकी सेवा से भी हनुमान जैसी पांडवों की सेवा अधिक है। कृष्ण ने अर्जुन को अपना भग्नीपति बनाया, भग्नीपति समझते हैं ना, अपना बहनोई बना दिया। ऐसा ये प्रेम, उनके रथ पर सारथी बन करके उनके घोड़ों को धोया, उनका आदेश पालन किया। और इनसे भी बढ़ करके उद्धव जी हैं, उनके एतम हृदय में मित्र हैं, उनके सखा भी हैं, कभी कभी सलाह इत्यादि देते हैं, मंत्री भी हैं, सब प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। और ये उद्धव जी कहते हैं मैं गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए आशा महो चरण रेणु शाम हम श्याम वृंदावने किम अपगुल मलतौ सभी नाम जा दुस्तजन स्वजन आज पथंज हे जय मुकुंद पदमिं सुबिधि मृविज्ञान। सुतिया जिनके चरण कमलों को लाखों वर्षों से पा नहीं पाती हैं, वे कृष्ण चंद्र गोपियों के कहने पर उठते और बैठते हैं। अभी उन्होंने गाया नहीं, छाछ पर, थोड़े से छाछ पर कृष्ण को नचाती हैं ये गोपियां। इसलिए उनकी चरण की धूलि को पाने के लिए यदि ब्रज में हम गुल्म लता और घास भी हो जाए जिस पर गोपियों की चरण धूलि पड़े, तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। इसलिए ये गोपी परम सबसे श्रेष्ठ है, इसी के अधीन और सब है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति ये संसारिक दृष्टि में भी जिस माता पिता ने पुत्र का जन्म दिया, पाला पोसा जीवन भर, उसकी शादी कर दी, जिस दिन शादी कर दी ना उसी दिन अपनी वो पत्नी का हो गया, माता पिता से थोड़ा सा इधर हो जाता है, जितना भी माता पिता के प्रति श्रद्धा रखे किंतु दिल तो वो अपनी पत्नी को देता है। क्यों? पत्नी अपने लिए कुछ भी नहीं रखती, वो सर्वस्व रूप में संपूर्ण रूप में पति का हो जाती है, जो मैया नहीं दे सकती। इसलिए ये प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। ये यदि कृष्ण को प्रेम करना है, उनको वशीभूत करना है, तो गोपियां जैसा भाव यदि हो तो कृष्ण को सहज ही वशीभूत किया जा सकता है। कृष्ण की सेवा करने से, भक्ति करने से वो प्रसन्न नहीं होंगे। यदि ये आप कहें मैं राधिका जी की दासी हूं, कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। उनको प्रसन्न करना बहुत थोड़ी सी बात है। यदि कोई बन जाए ऐसा जो मैं राधिका जी की दासी होना चाहता हूं या हूं, इसलिए इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत का भी प्रतिपाद्य विषय यही है, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादुरेणुम अभिक्ष्णत जातं हरि कथोद्गीत पुनात भवनत्रयम्। मैं नंद बाबा के गांव में रहने वाली जो गोप कुमारियां हैं उनकी चरण की धूलि की मैं वंदना करता हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम तो बहुवचन और धूलि एक वचन, तो लाखों गोपियों में से एक धूली किसकी होगी? ये राधा जी की चरण की धूली होगी। इसलिए उनकी चरण धूली के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव जी जैसे भक्त लोग। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य ये कृष्ण प्रेम गोपी प्रेम है, इसी को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। दिया कैसे? जंगल में महाप्रभु जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, बड़े भाव से हाथ उठा करके आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है, शरीर में रोमांच और पुलक हो रहा है, चित्त द्रवित हो रहा है। बाघ भालू जो कोई सुनते हैं उनके पीछे पीछे हो लेते हैं और वो भी कृष्ण कृष्ण कहते हैं। बाघों को नचा दिया, शेरों को नचा दिया, भालुओं को नचा दिया, मनुष्यों की तो बात ही क्या। ये प्रेम है जिसको देने के लिए महाप्रभु आए। अभी नगर संकीर्तन निकलने वाला है, करीब 6 बज गया, बहुत विलंब हो जाएगा, इसलिए मैं अपने वक्तव्य को आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर समय मिलने पर हम लोग इसके विषय में बतलाएंगे। भारतवर्ष में दो प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं, एक चलता है अद्वैत, दूसरा होता है द्वैत। अद्वैत में सोहम करते हैं, सिवोहम सिवोहम, मैं ही वही हूँ, कौन तुम हो? वही हूँ, वह कौन सा है इसकी व्यक्ति नहीं। सोहम मैं ही ब्रह्म हूँ, अरे तुम ब्रह्म कब से हुआ? ब्रह्म हो जाएगा, थोड़े से दुख के लिए तो बिलबिला रहा है, अभी तुम्हारी हजारों बार मृत्यु हुई, हजारों बार जन्म हुआ, तो ब्रह्म कैसे हो जाएगा? तू ब्रह्म नहीं हो सकता है, तुम ब्रह्म का दास अधिक से अधिक होगा। तो जो लोग कहते हैं सोहम सिवोहम सिवोहम, क्या तात्पर्य इसको समझिए, सब साधु एक नहीं है। ब्रज के भाव वाले जो संत हैं और हरिद्वार और काशी के जो संत हैं एक नहीं है, इस चीज को अच्छी तरह से समझिए, दोनों की एक भावना नहीं है। वृंदावन वाले ब्रज के जो ब्रज रस रसिक होते हैं, वो लोग जो है मुक्ति चाहने वाले, सोहम स्वामी मैं वही हूं, तो दुख से बिलबिला क्यों रहा, क्यों बिलबिला रहा है? हम सोहम नहीं हो सकते। दूसरी बात एक छोटी सी समझिए, शिवोहम मैं शिव हूं। जो शिव अपने को पहले जो मैया की आराधना करता था, दुर्गा जी की, उमा जी की, पार्वती जी की, सती जी की जो पूजा करता था, उस समय तो मैया मैया कहता था, और जब शिवोहम वो शिव हो जाएगा तो पार्वती उसकी क्या लगेंगी, इसको विचार कीजिए, पत्नी हो जाएंगी ना, कहे बेटा तुम कल बेटा था आज हमारा पति बनेगा, अपने तलवार से उसको खंड बिखंड करके उनकी माला को गले में पहनती हैं। शिव जी ऐसे दुष्ट लोगों का, जो कि शिव बनना चाहता है, ब्रह्म बनना चाहता है, राम बनना चाहता है, ऐसे दुष्ट लोगों का, असुर ये लोग हैं, उनके मुंड माला को पहनते हैं। शंकर जी देखिए वो सर्पों की माला पहनते हैं, किस लिए? दो विचार, पहला विचार ये जगत है, ये विष है, विष धर सर्प के समान है, इसलिए उसको धारण करते हैं, ये जगत के लोग विष को ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरी बात है संकर्षण का नाम, संकर्षण जो है ना सर्प के रूप में है, जो पृथ्वी को धारण किए हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, वही अनंत देव जो है शंकर जी के गुरु हैं, इसलिए अपने गुरु जी को गले में लगाते हैं और सब समय वो उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए अपने गुरु के रूप में उनको धारण करते हैं। विष ये जगत की विभूति होती है मरे हुए लोगों की, किस लिए धारण करते हैं? देखो जगत का यही स्वरूप है, ये मर जाने के बाद में विष ये विभूति बन जाएगा, उसको धारण करते हैं। जगत में सार कृष्ण है, कृष्ण ही आराध्य हैं सबके, इसलिए उनका नाम करते हैं। ये हरे कृष्ण जो नाम है इसको जरा ठीक से समझेंगे, हरे कृष्ण, हरे माने यहाँ पर कृष्ण के भी चित्त को जो हरण करने वाली राधिका है, जो कृष्ण के भी चित्त को हरण करती है, उनका नाम है हरा, हरा से यह हुआ है हरे, इसलिए हरे माने हे राधिके, और कृष्ण माने जगत को जो आकर्षण करने वाले हैं, राधा जी को भी जो आकर्षण करते हैं, उनका नाम है कृष्ण, इसलिए हरे कृष्ण माने क्या हुआ, हरे माने राधिका, कृष्ण माने ये कृष्ण। और हरे राम में क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति का दो उपास्य नहीं होता, जो नहीं जानते हैं वो हरे माने विष्णु, कृष्ण माने कृष्ण, राम माने दासवत्सी राम लगाते हैं, ये साधारण लोगों के लिए है, किंतु विशेष जो गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त कर चुका है उसके लिए ये सब चीजें नहीं है। उनके लिए है हरे राम, हरे माने कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली राधिका, ऐसा सुंदर रूप है, कृष्ण संसार में सबसे सुंदर है, किंतु राधा जी उनसे दो आंगुल और अधिक सुंदरी हैं, जो कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली है। कृष्ण में सब प्रकार के गुण हैं, किंतु राधा जी में ऐसा गुण है प्रेममयी सेवा, जो कृष्ण भी नहीं कर सकते, ये सीखते हैं कृष्ण उनसे। इसलिए राम माने होगा राधा रमण, जो राम है, राधा रमण वृंदावन में है ना, उन्हीं का नाम है राम। रमयति इति राम, राधा के साथ में रमण विलास करते हैं, जो जीवों के हृदय में निवास करते हैं वो है राम। उन्होंने अपना एक नाम आंशिक रूप में अपने ऐश्वर्यमय लीला के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दे रखा है, किंतु असल में राम राधा रमण का ही नाम राम है। इसलिए उस समय में जब हम नाम करेंगे तो हरे के साथ में वो राम आएंगे, राधा रमण राम, ये राम नहीं, वो तो सीता के साथ में बैठेंगे, नहीं तो रसाभास होकर के सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए जब इस नाम को करेंगे एकांत चित्त होकर के राधा कृष्ण के रूप में इस नाम को लेंगे। और अभी हम लोग अभी नगर संकीर्तन के लिए चल रहे हैं, फिर जब समय होगा तो हम लोग धर्म के तत्व के रहस्यों को विशेष करके प्रेम के संबंध में हम लोग कुछ बोलेंगे। आज यहीं तक बंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। पार्टी के साथ में सबके लिए मिल रहे हैं, सभी लोग नगर संकीर्तन थोड़ा सा होगा, 8 घंटा के करीब में हो जाएगा, इसमें सभी लोग सुनने आए हैं नगर संकीर्तन के साथ में। इसके बाद में हरिदास ठाकुर जी का संघ मिला, उनके गुरु भी ऐसे ही थे, अद्वैताचार्य के भी बापा थे, गुरुनंदन आचार्य। इसे बचपन से ही हरिदास ठाकुर का संग होने से परम विरक्त हुए। कैसे उन्होंने घर को छोड़ा, माता पिता भाई बंधु उनकी शादी भी कर दी, तभी उसको भी छोड़ दिया। इसका जिनको अनुभव नहीं है उनके लिए जरा बड़ा कठिन है।
जिसके घर में कुछ नहीं है, दरिद्र घर का आदमी है, अत्यंत दरिद्र, उसके घर में कुछ भी नहीं है और उसके माता पिता इत्यादि मर गए हों, घर बिक गया हो, उसके घर में चूहे भी रहने का स्थान नहीं हो, ऐसे लोग घर छोड़ करके नहीं भजन करते, उन लोगों के लिए बड़ा भारी कठिन है। ऐसे लोग यदि भजन करने आते हैं तो वो संग्रह करने लगते हैं और संग्रह करके इस कुल उस कुल दोनों कुल को डुबा देते हैं, वो समझ नहीं पाते इस कुल को खाया उस कुल को, दोनों कुल को खा लिया, जो उच्च कुल का रहता है जिसके घर में कुछ है त्याग करने के लिए है, वो त्याग करके तब फिर किसी चीज की स्प्रिया नहीं होती, जो कुछ आता है भगवान और गुरु और वैष्णव की सेवा में लगा देता है, अपने लिए एक भी कुछ नहीं रखता। और वैसे जो लोग होते हैं उनके लिए बड़ा भारी कठिन होता है, जिनको घर वाले चाहते हैं ये घर से निकल जाए, घर में न रहे, वो आदमी त्यागी होकर के भजन नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? जिसके निकलने से घर वाले रोए, हाय हाय इतना अच्छा लड़का हमारा, हीरा का टुकड़ा निकल गया घर से, जिसके लिए घर वाले रोए, समाज वाले रोए और सब वाले लोग रोए, वो आदमी जरूर भजन करेगा, क्योंकि सब देख सुन करके अच्छी तरह से तब वो भजन करने गया है, वो परम विरक्त हो सकता है। और नहीं तो भोगों की लालसा नहीं जाएगी, मिल नहीं रहा है इसलिए शादी नहीं हो रही, क्या है स्त्री मर गई तो मूड मोए भय संन्यास है, क्या जब संपत्ति नष्ट हो जाती है स्त्री भी या तो मर जाती है या पीठ में झाड़ू लगाती है, जब तो ऐसे जो विरक्त हो जाते हैं उन लोगों का हरि भजन बड़ा कठिन है। रघुनाथ दास गोस्वामी सब प्रकार से संपन्न थे, पढ़े लिखे थे, राजा के लड़के थे, परम बुद्धिमान थे, हरिदास ठाकुर का ये मिला। पूर्व जन्म का भी कुछ होना चाहिए, पूर्व जन्म की भी सुकृति कुछ संस्कार होना चाहिए। इस तरह से देखो, जैसे जब ये छोड़ दिया सब, वो तो घर में रहते हुए सब छोड़ चुके थे, इसलिए जब गए पुरी में तो उनके पिताजी ने उनके लिए एक रसोईया, एक ब्राह्मण सब्जी बाजार इत्यादि करने वाला और एक पैसा रखने वाला इनको भेज दिया कि इसको रोज रसोई अपने हाथ से बना करके खिलाना और पैसा मैं देता रहूंगा, जब तक ये रहेगा बच्चा तब तक इसको ऐसा खिला, उसको भीख न मांगना पड़े। महाप्रभु जी के कहने से उन्होंने ग्रहण किया और एक दिन लिया कि दूसरे दिन लिया, इसके बाद में बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? विषयी का अन्न खाने से चित्त मलिन हो जाता है, तो जो विषयी का अन्न लेकर के गुरु वैष्णव को नहीं देगा तो क्या होगा? विषयी बन जाएगा, उसका भजन नहीं होगा। इसलिए रघुनाथ दास को स्वामी ने कहा, मैं उनका अन्न नहीं खाता, वो विषयी है। क्यों विषय? विषय किसको कहते हैं? विषय माने क्या? भगवान का जो भजन करते हैं वो भी विषय के लिए, भगवान का जो पूजन करते हैं कहते प्रभु हमको संपत्ति देना, हरिनाम करते हैं इसलिए कि लोग देखेंगे हमने बाजार में एक पैम्पलेट बचवाया और ढोलक बजा करके चारों तरफ में घोषणा कर दी कि मैं आज से एक कोटी नाम पर बैठ रहा हूँ, एक कोटी नाम हम पूरा करके तब उठेंगे, ढोल बजा करके कह दिया। तो इसका मतलब क्या? कहने की चीज है? कहने की चीज है। इसलिए यदि भजन करना है रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा विचार लेकर के तब भगवान का भजन करें। भोजन क्या करते थे? ठाकुर जी का प्रसाद मिलता उसको भी अब छोड़ दिया, सिंह दरवाजे पर खड़े रहते कोई ना कोई दे देता, कहे ये बेस्या का काम है, वो आएगा तो देगा, इसलिए नहीं करेंगे। समय पर हमको भोजन करना है, समय पर भजन करना है, समय पर सब करना है। इसलिए महाप्रभु जी ने कह दिया था, भालो ना खाई दे, भालो ना परी दे, अमानी मानो धोए, कृष्ण नाम सदा लबे। अच्छी तरह से भोजन और अच्छे कपड़े इत्यादि को दूर करके एकदम सरल स्वभाव में, सरल सहज रूप में रह करके दिन रात भगवान की चिंता करते, तब ये भजन होता है। महाप्रभु जी ने इनका हाथ दे दिया स्वरूप दामोदर जी के हाथ में। कौन है स्वरूप दामोदर? पूर्व लीला के ललिता जी। कौन दे रहे हैं? स्वयं कृष्ण दे रहे हैं। अभी किस रूप में है? राधा जी के रूप में। महाप्रभु राधा जी के भाव में विभावित हैं, तो राधा जी ने अपनी सखी रति मंजरी उनका हाथ लेकर के और दे दिया किसके हाथ में? ललिता जी। इसको सिखाओ, पढ़ाओ, योग्य बनाओ। ऐसे ही बिना किसी वैष्णव संघ के भाई हरि भजन लाख कोटि उपाय पर नहीं होगा। हम चाहेंगे कि हरि नाम हो। अभी हमारा नाम क्या है? सदाई नमापराध, कभू नमाभास, कभू नमाभास, सदाई नमापराध, ये सब जाने में भाई कृष्ण भक्त निर्वास। हम लोगों का नाम शुद्ध नाम नहीं है। शुद्ध नाम रहता तो एक कृष्ण नाम हम लेते तो चित्त में प्रेम उदित हो जाता। कहाँ प्रेम होता है? आंखें कहाँ बरसती हैं? हृदय कहाँ द्रवित होता है? इसलिए अभी नहीं है। उसके शुद्ध हरिनाम करने से उसके जितनी विपत्तियां आएंगी सब दूर हो जाएंगी, अनर्थ रहेगा नहीं, धीरे धीरे सब दूर हो जाएगा। कहाँ हम लोगों का होता है? इसलिए हम लोगों को इस समय हमारा प्रधान कर्तव्य है ऐसे वैष्णव लोग जो शुद्ध वैष्णव है उनकी सेवा करें और वो जैसा कहते हैं उनके आदेश को पालन करें, बस इससे बढ़कर के भक्ति नहीं। अभी हम लोग जो भगवतामृत में पढ़ रहे हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? साधु संघ की महिमा दिखला रहे हैं। यदि कोई एक व्यक्ति मायावादियों के संग में, सहजिया लोगों के साथ में रह करके एक कोटि क्या 10 कोटि नाम करता है तो उसकी गति कहां तक जाएगी? मुक्ति तक जाएगी, अधिक सहज वो भी नहीं सहज होगी। एक आदमी अयोध्या के प्रति अनुरक्त है और वो नाम कर रहा है तो उसकी गति कहां तक जाएगी? महाप्रभु जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा, इसलिए महाप्रभु के मत में जो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे हैं या उनके एकांत अनुगत हैं वो लोग जो किए हैं वैसा ही हम अपना भजन करेंगे। हम लोगों के गुरु जी से पढ़ करके कौन संत है अभी है? गुरु जी हम लोगों के संत हैं, उन्होंने जैसे अपने जीवन में आचरण किया है हम लोगों के अनुकूल में वो सब आचरण ग्रहण करना चाहिए। नया कुछ मत करो, नया करेगा मरेगा, इसलिए कोई नया चीज मत करो। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कैसे थे, सालग्राम सेवा की पूजा कर रहे हैं, मन में हुई ये इनकी हम सेवा करें तो राधारमण जी बन गए, इच्छा मात्र से ही कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। क्यों, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त तो कोई लालसा नहीं, हम लोगों में अभी लालसा है, हमें ये लालसा ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, लोग जगत के लोग हमको सम्मान करें, कितनी तरह की लालसा है। अभी पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के हम रह नहीं सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, किसी में ये सब चीजें, यदि भजन करना है तो उनका आदर्श लेना पड़ेगा, अपने गुरु जी का आदर्श लेना पड़ेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कैसे हैं, पुरुष रे कीट हईते मुई से लघिष्ट, गाई हईते मुई से पापिष्ट, मोर नाम जय लय, मोर नाम जय सुने पाप। हनुमान जी कहते हैं देखो मैं एक ऐसा बंदर था, वो भी जला हुआ मुख वाला, जो मेरा नाम स्मरण करेगा बंदर का तो उसकी यात्रा नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, किंतु आज राम नाम करने से आज मैं पवित्र हो गया, हमारा नाम लेकर के और सब लोग यात्रा करते हैं। ये उस भगवान नाम की और ये सब साधु संतों की महिमा है, ऐसा अपने को कर, इसलिए भजन करने में वैसा ही होना चाहिए। बाहर एक बतलाऊं, यदि भजन करना है अंतर और बाहर एक रखो, अंतर बाहिरे सम व्यवहार अमानी मान दहो। यदि भजन करने की लालसा है तो भीतर में जैसी भावना है बाहर में वैसे, दोनों एक समान, उसमें अलग अलग मत करो, कुछ छिपाने के लिए है और कुछ दिखलाने के लिए, ऐसा मत करो, एक जैसा हो। एक क्यों, जब अंतर में हमारा जो रहेगा बाहर में एक रहेगा तो हमारा हृदय पवित्र रहेगा। और भीतर वाले को छिपाते हैं गुरु जी से, वैष्णव से, लोगों से, और अपने को अच्छा दिखलाते हैं तो वो भजन नहीं होगा, भजन नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ऐसा लिखा, अंतरे बाहिरे सम व्यवहार। यदि भजन करना है तो ऐसा नहीं आप बड़े अच्छे आदमी हैं, जब चला गया तो कहते इसके समान दुष्ट और कोई है ही नहीं, ये महाबदमाश आदमी है, ऐसा नहीं, एक समान हूं। किसी को बुरा मत देखा, बुरा मत देखो, नहीं तो बुरा देखने से सभी कुछ बुरा दिखेगा, पहले अपने भले होकर के दूसरे का देखो, तब बुरा कोई मिलेगा ही नहीं, बुरा कोई नहीं मिलेगा, बस मैं ही बुरा हूं, बस इस रूप में देखे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया, वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमको वृंदावन मिला, नित्यानंद प्रभु की कृपा से रूप सनातन के दर्शन हुए, रूप गोस्वामी की सेवा मिली रूप सनातन की, और गोविंद जी गोपीनाथ और मदन मोहन की सेवा मिली। अब विचार करो कि हमारे ऊपर में किसकी कृपा है, किसकी कृपा है हमारे ऊपर में, ये विचार करके देखो कि हम निराश है, हमने किसी को दिया ही नहीं अपना हृदय, जो ये कर सकूं जो मैंने अपना हृदय दे दिया है और उनकी हमारे ऊपर में कृपा है, इसलिए ऐसा देखो गुरु को अपना मान करके चलो, गुरु के चरण में हमने संपूर्ण रूप से दे दिया है। ये कैसे पता चलेगा, इसका एक लक्षण है, जो गुरु सेवक होगा वो अपने बड़े जो सीनियर जो गुरु भाई हैं और दूसरे उनको आदर करेगा, इसका ये लक्षण है। जो उनकी सेवा किया है उनकी बात को समझते हैं, भजन करते हैं, उन सबके प्रति आदर की भावना रहेगी, ऐसा होना चाहिए। इसे जितने भी हमारे वैष्णव लोग हो गए हैं जिनकी बातें चल रही हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी संपूर्ण से चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपना समर्पण कर दिया, और जब ब्रज में आए तो उन्होंने रूप और सनातन के चरणों में अपने को दे दिया, कभी भी स्वतंत्र नहीं रहे। न तो रूप संपत्ति, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपनी संपत्ति को उनको क्यों देंगे? यदि सनातन गोस्वामी के प्रति रघुनाथ दास गोस्वामी कोई कपटता करते, अपने अंदर की बात नहीं बतलाते तो उस पर कृपा करते। उसी तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किनका सहारा लिया? नित्यानंद प्रभु का, और उन्हीं की कृपा से उनका मनोरथ सिद्ध हुआ। और कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने किसका सहारा लिया? स्वर्ग दामोदर का, और जब ब्रज में आए तो रूप गोस्वामी का। इसलिए हम लोगों को विचार करके वैसे ही भजन करना चाहिए, लाइन से अलग मत हो। अपने हजार चेष्टा करोगे भगवान उसे द्रवित नहीं होंगे। अभी इसी में हम लोगों ने पढ़ा ना, लाख चेष्टा करके रच पच जाओ, भगवान नहीं द्रवित होंगे, कृपा नहीं करेंगे। कब कृपा करेंगे? दीनहीन बनो, अपने गुरु वैष्णव की सेवा करो, उसके साथ में हरिनाम करो जैसा आदेश कर। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए क्या करूंगा? यदि नरक भी जाने लायक काम होगा तो भी करेंगे। इसलिए इस रूप में हम उनको बनाना चाहिए। आज रात अधिक हो गई, मैं व्यस्त हो गया था, नहीं तो एक एक पर कुछ विचार करके विशेष रूप में बतलाता। कल हम लोग देखेंगे। और इधर में आप लोग सभी लोग तैयार हो जाएंगे। कल से आ रहे थे रात में, तो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो गए, नींद आ गई। उन्होंने सपने देखा कि नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, अरे तुमने हमारे लिए अपने भाई को त्याग कर दिया और घर को त्याग कर दिया, इसलिए तुम्हारे ऊपर में हमारी कृपा होगी। यह सपना श्री चरण उनके ऊपर में रख दिया, तब फिर वो बिंदा बनाया, तो उन्हीं की कृपा से उन्होंने उनको रूप सनातन से भेंट हुई।